السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں جو رہنمائی فرمائی ہے، ان میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور الحمدللہ کہ ہم آخری عشرے کی تاک راتوں میں داخل ہو چکے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لیلت القدر کو آخری عشرے کے آخری ہفتے میں تلاش کرو، آخری 7 راتوں میں، اور الحمدللہ کہ ہم ان میں بھی داخل ہو چکے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لیلت القدر جو ہے ہر سال ضروری نہیں کہ ایک ہی ڈیٹ ہو، بدل بدل کے آتی رہتی ہے، اور یہ بڑی ہی مبارک، بہت ہی قدر و منزلت والی رات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں پتہ کیا ہے، تمہیں کیا پتہ کہ یہ رات ہے کیا. جب ہم اس سورت میں پڑھتے ہیں لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، لیلت القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں آپ کے رب کے بارے میں کیا سوچ آتی ہے، کہ آپ کا رب کیسا ہے. یہ ایک آیت ہمیں سمجھا دیتی ہے کہ ہمارا رب کتنا غنی ہے، وہ کتنا دینے والا ہے، اس کی نیچر پتہ چلتی ہے، وہ کتنا نوازنے والا ہے، اور وہ دینے میں بخیل نہیں ہے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ لیلت القدر 10 دن سے زیادہ بہتر، 10 راتوں سے زیادہ بہتر، 1 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، اس طرح بھی کہا جا سکتا تھا. اتنا زیادہ کچھ دینے کی کیا ضرورت ہے. ہم کسی کو جب دینے لگتے ہیں نا، بہت گن گن کے دیتے ہیں، بہت ہاتھ کھول کے نہیں دیتے. کبھی یہ سوچ کے کہ بگڑ جائے گا، کبھی سوچ کے کہ بری عادتیں تھوڑی ڈالنی ہیں، کبھی یہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ زیادہ دے دیا تو ہمارے پاس کمی آ جائے گی. لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے اس ایک آیت سے کہ ہمارے رب کو نہ اس چیز کا ڈر ہے کہ میرے پاس کمی آ جائے گی، ختم ہو جائے گا، نہ اس چیز کی کوئی اس کو پرواہ ہے کہ دے دیا تو میرے خزانوں کا کیا بنے گا، نہ اس کو یہ کوئی فکر ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے گا تو کیا ہوگا، اور نہ ہی اس کو یہ ہے کہ ان کو دے دیا تو بگڑ جائیں گے. وہ دیتا ہے تو اس قدر دیتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں. تو آپ کا معاملہ ایسے رب کے ساتھ ہے. اب انسان اس کی شان کو ذہن میں رکھ کے اس سے مانگے. وہ بخیل نہیں، وہ غنی ہے، وہ دینے والا ہے. بلکہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں، تو مجھ سے ہدایت مانگو. یعنی وہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو. کون کہے گا کہ مجھ سے مانگو؟ دنیا میں کوئی بھی نہیں کہتا. ہر کوئی کہتا ہے کہ کوئی مانگنے نہ آ جائے، بلکہ بچتے پھرتے ہیں کہ اوہو یہ بھی مانگ لے گا. اب کتنوں کو دیں؟ ایک کو دینا شروع کیا تو 4 آ جائیں گے. کبھی کبھی ہم اس وجہ سے بھی نہیں دیتے. پھر یہ بھی کبھی ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا اب ہر دفعہ میرے پیچھے ہی پڑ جائیں گے یہ لوگ. لیکن وہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جس کو میں غنی کر دوں، تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں رزق دوں گا. ٹھیک ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مجھ سے مانگو. مانگو تو صحیح، या नहीं, वो मांगने को इंसान जब उससे मांगता है तो इस चीज को पसंद करता है, उसे तंग नहीं आता, उसे बेजार नहीं होता, और ना ही उसको खजानों में कमी का कोई खौफ है। बल्कि फरमाया, तुम सब गुनाहगार हो सिवाय जिसको मैं बचा लूं। तो तुम में से जो ये जानता है कि मैं माफ करने पे कुदरत रखता हूं और वो मुझसे माफी चाहता है, तो मैं उसको माफ कर देता हूं और मुझे कोई परवाह नहीं होती। और फिर फरमाया, अगर तुम्हारा पहला और आखिरी आदमी जिंदा मुर्दा खुश्क तार सब के सब मेरे बंदों में सबसे मुत्तकी शख्स के दिल की तरह हो जाए, तो इससे मेरी बादशाहत में मच्छर के पर के बराबर भी इजाफा नहीं होता। और अगर तुम्हारा पहला और आखिरी आदमी और जिंदा और मुर्दा और खुश्क और तार मेरे बंदों में सबसे बदबخت शख्स के दिल की तरह हो जाए, तो इससे भी मेरी बादशाहत में किसी मच्छर के पर के बराबर भी कमी नहीं होती। और फिर और सुनिए, बड़ी अहम बात है मेरे बंदो, अगर तुम्हारा पहला और आखिरी यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी बंदे तक जो इस जमीन पे आए, जिंदा मुर्दा खुश्क तर सब एक मैदान में जमा हो जाए, जितने लोग मर चुके हैं ना वो भी जिंदा होके खड़े हो जाएं और एक मैदान में खड़े होके सब एक जगह पे जमा हो जाएं, और तुम में से हर इंसान अपनी आखिरी दर्जे की तमन्ना मांगे, यानी जो दिल में आता है मांगो, इतना मांगो इतना मांगो इतना मांगो, मांगते जाओ मांगते जाओ मांगते जाओ, हत्ता कि आपकी मांगे खत्म हो जाए, और मैं तुम सब में हर मांगने वाले का सवाल पूरा कर दूं। हर एक अपनी अपनी लैंग्वेज में मांग रहा है, एक ही वक्त में मांग रहा है, और कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, दुनिया आखिर हर चीज मांग ले, जो जहन में आती मांगो। और अल्लाह ताला फरमाता है, मैं हर एक का सवाल पूरा कर दूं तो उससे मेरी बादशाहत में इतनी सी भी कमी नहीं होती जितनी के तुम एक सुई को समंदर में डबो के निकालो तो जितनी कमी समंदर के पानी में हो जाएगी उतनी भी नहीं होती। अंदाजा कीजिए कि अल्लाह ताला के खजाने कितने बेशबहा हैं, कितने ज्यादा हैं, और वो सब को भी दे दे तब भी कमी नहीं वाकई होनी। और इस वक्त तो सब तो मांग भी नहीं रहे ना, कोई तो मर चुके हैं और फिर सारे हाथ उठा के खड़े भी नहीं हुए मांगने के लिए, लेकिन अगर सब मांग भी ले तो उसको परवाह नहीं, वो सबको अता कर दे तो भी उसके खजानों में कमी नहीं। जब ये बात जहन में होती है तो तब इंसान अल्लाह ताला से जी भर के दिल खोल के मांगता है। अल्लाह ताला को ऐसा ना समझे जैसे दुनिया में आप किसी से किसी इंसान से कुछ मांगते हैं तो आपको कुछ खदशा होता है, पता नहीं देगा कि नहीं देगा, पता नहीं क्या सोचेगा, पता नहीं क्या कहेगा, थोड़ा मांगू ज्यादा मांगू कितना मांगू बार बार ना मांगू तंग ना आ जाए, ऐसी कोई सोच भी जहन में ना लाइएगा, बल्कि दिल भर के मांगिए और इतना मांगे जितना कुछ भी आप मांगना चाहते हैं, जितना कुछ भी आपके जहन में आता है। जानते हैं जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फैसले से जब फारिग हो जाएगा तो जहन्नुम में अभी कुछ लोग होंगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले थे दुनिया में, अल्लाह ताला उनको निकालने का इरादा फरमाएगा तो फरिश्तों को हुक्म देगा कि उनको निकाल लें। फरिश्ते जाएंगे और सजदे के निशानों से उनको पहचानेंगे। तो अल्लाह ताला ने, आपको पता है कि जहन्नुम की आग को हराम किया है कि जहन्नुम की आग सजदे की जगहों को नहीं जला सकती, इसलिए वो सजदे की जगहों से पहचानेंगे, वरना बाकी तो वो बिल्कुल स्याह काले जल के हो चुके होंगे, उनका कोई हाल ही नहीं रह गया होगा, तो वैसे उनको नहीं पहचान सकते सिर्फ सजदे के निशानों से, क्योंकि वहां पे नहीं आग ने छुआ, तो अल्लाह ताला उनको निकाल लेगा। अब एक आदमी बचा हुआ रह जाएगा जहन्नुम में, जो मुंह के बल आग में गिरा पड़ा होगा। वो कहेगा, हे रब, हे रब, मुझे तो इस जहन्नुम की बू ने तबाह करके रख दिया है और इसकी आंच ने मुझे जला डाला है। मेरा चेहरा आग से फेर दे। वो दुआ करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर मैंने तेरी ये दरख्वास्त मान ली तो फिर तुम कोई और चीज मांगना शुरू कर दोगे। वो कहेगा, नहीं नहीं अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ठीक है, उसका मुंह आग से फेर देगा। फिर जितना अल्लाह ताला चाहेगा वक्त गुजरता रहेगा। इसके बाद वो अर्ज करेगा, ए रब, मुझे जन्नत के दरवाजे के थोड़ा सा करीब ही कर दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हारा ये ख्याल नहीं था कि तुम इसके अलावा कोई चीज नहीं मांगोगे? तुमने कहा था मैं नहीं मांगूंगा। ए इब्ने आदम, तेरी बर्बादी, तू कितना बेवफा धोखेबाज है। अब वो बराबर दुआ करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तब अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर मैं तुम्हारी ये दरख्वास्त पूरी कर दूं तो तुम इसके अलावा फिर और मांगने शुरू हो जाओगे। वो गर्ज करेगा, नहीं यार रब, तेरी इज्जत की कसम, इसके अलावा मैंने ही नहीं कुछ मांगना, बस मुझे ये अता कर दे कि मुझे जन्नत के दरवाजे के करीब ही कर दे। पक्का वादा करेगा, मैं इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। तब अल्लाह ताला उसको जन्नत के दरवाजे के करीब कर देगा। अब वो क्या देख रहा है? वो जन्नत की नेमतें देख रहा है, जन्नत की मजे देख रहा है, जन्नत के मोहल्लात देख रहा है। खड़ा रहेगा वहां पे, चुप करके खड़ा रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा। जब तक अल्लाह ताला की मर्जी तब तक खामोश रहेगा। फिर अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने तो कहा था मैं इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। ऐ इब्ने आदम, तू कितना धोखेबाज है। वो अर्ज करेगा, है मेरे रब, मुझे तो अपनी मखलूकात में सबसे ज्यादा बदबख्त तो नाना बना। वो गिड़गिड़ाता रहेगा, दुआएं करता रहेगा, हत्ता कि अल्लाह ताला हंस देगा और फिर इसको जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दे देगा। जब वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो उससे कहा जाएगा, तुम मांगो, क्या मांगते हो? जो चाहे मांगो। तो वो मांगना शुरू करेगा, मांगता जाएगा, मांगता जाएगा, मांगता जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने तुझे अता किया, मैंने तुझे ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। अब वो मांगता जा रहा है, मांगता जा रहा है, हत्ता के उसके सारे सवालात पूरे हो गए। अब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब कोई ख्वाहिश बाकी रह ही नहीं गई। तो अल्लाह ताला उसको खुद याद दिलाएगा, ये भी मांग ले, ये भी मांग ले, ये भी मांग ले, सुबहान अल्लाह, ये भी मांग ले, ये भी मैंने तुझे दे दिया, ये भी मैंने तुझे दे दिया, ये भी मैंने तुझे दे दिया, ये भी मांग ले। और फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने ये सब कुछ दिया तुझे और इससे 10 गुना ज्यादा दिया, यानी पूरी जमीन में जो कुछ है उसका भी 10 टाइम्स मोर। और ये है वो जन्नत में दाखिल होने वाला लास्ट आदमी। बुखारी में ये रिवायत आती है, लास्ट आदमी, इसके बाद नहीं कोई जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, वो जो लास्ट में जाएगा उसके ऊपर भी रब की करम नवाजी देखें। सुभान अल्लाह के अल्लाह ताला उसको भी इस कदर अता फरमाएगा, इस कदर उसको देगा। अल्लाह ताला की अता कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, अंदाजा कीजिए इससे कि वो जो आखिरी आदमी है उसको भी कितना नवाज देगा। तो उसकी रहमत बेतहाशा है, इतनी ज्यादा उसकी रहमत, उसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। और ये रातें मांगने की रातें हैं, ये रातें अपने गुनाहों के इकरार करने की रातें हैं, ये रातें तौबा करने की रातें हैं, और ये वो रातें हैं जिनमें किसी एक रात में पूरे साल के जो काम होने हैं अगली लैलतुल कदर तक, सब फरिश्तों को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा दुआएं करें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने और रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, कुल मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपनी दुनिया के लिए भी और अपनी आखरत के लिए भी। क्योंकि फरिश्तों को ये फैसले दे दिए जाएंगे, किसने इस साल में मर जाना है ये बता दिया जाएगा, लिस्ट होगी पूरी उनके हवाले कर दी जाएगी हर बंदे की, किसको कितना रिस्क मिलना है, किसने पैदा होना है, कहाँ कितनी बारिश होनी है, किसने हज पे जाना है, सब चीजें। कोई तकलीफ आनी है, कोई परेशानी आनी है, या कोई भलाई मिलनी है, कौन सा बच्चा पैदा होगा, कौन सा दुनिया से चला जाएगा, सब चीजें उनके हवाले कर दी जाएंगी। तो कितनी ज्यादा जरूरत है कि हम इन रातों में दुआएं करें, अल्लाह ताला से आफियत मांगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ इसको ये ना सोचे कि हाँ सवाब की रात है और बस सवाब हमने इसमें कमा लिया, ये भी सोचें कि हमने इसमें अल्लाह ताला से खैर मांगनी है और हर शर से पनाह मांगनी है, क्योंकि अब ये फैसले हो जाने हैं, और अल्लाह ताला से हमने बख्शिश मांगनी है। इतनी जो अल्लाह ताला की रहमत की रात है, इसमें भी अगर हम बख्शिश ना मांग सके और इसमें भी माफी ना हो सकी, तो और कब होगी जो इतनी ज्यादा बख्शिश की रात है। क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने को तैयार है, वो देने वाला है, वो देना चाहता है, वो उसने इरादा कर लिया कि मैंने बंदे को देना है। अब बंदा ही अगर कोताही करे तो अपने लिए ही खराबी है ना। अब एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, अगर तूने मुझसे दुआ की और उम्मीद लगाई कि मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा और परवाह नहीं करूंगा, ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान के किनारों तक भी पहुंच जाए और तू मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं तुझे बख्श दूंगा और मुझे परवाह भी नहीं होगी। ऐ इब्ने आदम, अगर तू जमीन भर के गुनाह लेकर मेरे पास आए, लेकिन इस हाल में मुझसे मिले कि तूने किसी के कोई मेरे साथ शरीक नहीं किया, तो मैं भी जमीन की वुसअतों के बराबर ही मगफिरत लेके तेरी तरफ आऊंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला को बंदे की तौबा बहुत पसंद है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं उसके साथ, वो जहां मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरी तरफ एक बालिश्त आया, मैं उसकी तरफ एक हाथ आ जाता हूं, अगर वो मेरी तरफ पैदल आया तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूं। यानी इतनी ज्यादा बख्शिश के साथ अल्लाह ताला उसकी तरफ बढ़ता है, इतनी ज्यादा मगफिरत के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, वो बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता, बल्कि हदीस में आता है अल्लाह ताला को हयात ही है कि कोई बंदा उसके आगे हाथ उठाए और वो उसको खाली हाथ लौटा दे। और अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि किसी बंदे ने कोई गुनाह किया तो कहा, ऐ मेरे रब, मैंने एक गुनाह कर दिया, मुझे माफ कर दे। तो रब फरमाता है, क्या मेरा बंदा जानता है कि उसका कोई रब है जो गुनाह माफ करता है और उस पे पकड़ता है, इसको पता है ये? मैंने इसका गुनाह माफ कर दिया। वो बंदा जब तक अल्लाह चाहे तो वो रुका रहता है उस गुनाह से, फिर उसके बाद फिर उससे गुनाह हो जाता है, फिर वो कहता है, मेरा रब, मुझसे फिर गुनाह हो गया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा जानता है इसका कोई रब है जो माफ करता है और जो पकड़ लेता है, तो मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया। फिर वो बंदा कुछ दिन ठहरता है, फिर उसके बाद फिर उसे गुनाह हो जाते हैं, तो फिर कहता है, अल्लाह ताला मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दे। यानी बंदा पलटता रहता है और अल्लाह ताला माफ करता रहता है, फिर वो फरमाते हैं, मेरे बंदे को पता है ना कि इसका कोई रब है जो गुनाह माफ कर देता है और उन पे पकड़ता भी। मैंने अपने बंदे को 3 बार माफ कर दिया, वो जो चाहे करे। ये नहीं अल्लाह ताला फरमाता कि बस 3 दफा ही है उसके बाद नहीं, लिमिट आ गई है तुम्हारी, अब इसके बाद करोगे तो कोई माफी नहीं है। ऐसा नहीं, बल्कि वो बख्शता रहता है, बख्शता रहता है, और बख्शना उसको पसंद है। इसीलिए हम कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्वा, तुझे पसंद है अल्लाह वो इंसान को कयामत के दिन भी जब इंसानों के दरमियान फैसले फरमाएगा तो उस वक्त भी उनकी पर्दापोशी फरमाएगा। बंदे को अपने सामने जब खड़ा करेगा अल्लाह ताला, तो उस वक्त भी एक बंदा ऐसा होगा जिसके पास गुनाह होंगे, अल्लाह ताला उसको गुनाह याद करवाएगा। मेरे बंदे तू जानता है तूने फना गुनाह किया? वो कहेगा है अल्लाह मुझसे वो हो गया। अल्लाह ताला याद करेगा, तुझे याद है तूने ये गुनाह किया था? अब वो अल्लाह ताला के करीब लाया गया ये बंदा, करीब है, और अल्लाह ताला ने इसको ढांप दिया कि कोई लोगों को नहीं सुन रहा कि ये क्या कन्वर्सेशन हो रही। तो वो बार बार एतराफ करेगा, हाँ यार अब मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गुनाह हो गया। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने दुनिया में भी तेरे पर पर्दा डाला था और तेरे लिए गुनाह माफ कर दिए थे, अब मैं यहां पे भी तुझे माफ करता हूं। फिर उसकी नेकियों का रजिस्टर लपेट दिया जाएगा। अब वो जब लोगों के सामने आएगा तो फिर लोगों को तो उसकी नेकियां ही नजर आएंगी और उनको पता भी नहीं होगा कि इसने कोई गुनाह किया। अल्लाह ताला ऐसे उसको ढांप लेगा, ये अल्लाह ताला की सरगोशी होगी इसके साथ, जो किसी को भी नहीं मालूम कि क्या बातचीत हुई और वाकई ये गुनाह भी करके आया हुआ। अल्लाह ताला इस तरह से बंदे को कयामत के दिन भी ढांप लेगा और कयामत के दिन भी उसको रुसवाई से बचा लेगा और उसका पर्दा रखेगा। इसी वजह से अल्लाह ताला से मांगे और मांगने से पहले उसकी हम्दो सना बयान करें, दुरूद पढ़ें और कोशिश करें कि आप सदका करें, उसके बाद दुआएं करें। अल्लाह ताला को सदका करना बंदे का बहुत पसंद है, सदका को अल्लाह ताला कबूल करता है, सदके से अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाता है, उसकी नाराजगी दूर हो जाती है। और जैसे कि इमाम इब्ने कय्यिम फरमाते हैं कि जब तुम्हारे पास बहुत सारी दुआएं हों, बहुत सारी दुआएं, हमारे पास कितनी दुआएं, इतनी दुआएं, इतनी हाजतें हमारी, इतनी सारी जरूरियात है, एक अंबार हो और तुम्हें समझ ना आए कि मैं अब क्या मांगू और कैसे मांगू, और इतनी सारी चीजें हैं, तो क्या करो, बख्शिश मांग लो। इसलिए कि अगर बख्शिश मिल गई तो अल्लाह ताला बिन मांगे ही सब कुछ ही दे देगा, जब वो राजी हो गया तो फिर क्या मुश्किल है। तो इसलिए अल्लाह ताला को मना लें अपने गुनाहों की बख्शिश करा के, और कसरत से यही कहते रहे अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्ना। और इसके लिए आपको मुसल्ले पे बैठने की जरूरत नहीं, आप उठ के जा रहे हैं पानी लेने के लिए, आप बाथरूम की तरफ चल के जा रहे हैं, आप मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, आप कोई और चीज लेने उठ खड़े हुए हैं, आप थोड़ी देर के लिए यानी थक गए हैं तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने के लिए कमर लगा रहे हैं, लेकिन जुबान पे एक ही बात होनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्ना। तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कबूल करेगा जरूर। ये देखें कि मैं हैरान होती हूँ, बहुत हैरान होती हूँ कि अल्लाह क्या है ये रोज़ा, आप बताइए 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे होगा किसी का, छोटा सा तो टाइम है, कोई इतना बड़ा टाइम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो सिला अल्लाह ताला ने उसके ऊपर रख दिया वो इतना अजीम, इतना ज्यादा, कितने छोटे छोटे काम है ये, एक रात जागना कौन सी ऐसी मुश्किल है चीज, कोई मुश्किल नहीं है, 10 रातें भी जागना कोई मुश्किल नहीं है, और ताक रातों में सिर्फ जागना है तो क्या मुश्किल हो गई। हमने साल भर में कितनी सारी रातें जाग के गुजारी होंगी। कभी बच्चा बीमार हो जाता है तब भी इंसान जागता है, कभी खुद को कोई तकलीफ हो जाती तब भी जागता है, कभी और कोई काम होते हैं ऐसे जो कि करने हैं जरूरी, या पढ़ाई करनी होती स्टूडेंट्स ने तो वो भी जागते हैं। तो हमें तो इतना बड़ा अजर मिल रहा है, एक रात कितने घंटे की हो जाएगी उसमें जाग के और अल्लाह ताला की तरफ लौ लगाने से। उसने इतना बड़ा इनाम दे दिया कि पूरी जिंदगी भी इबादत करते रहो। इसीलिए उलमा कहते हैं अल्फ शहर को ऐसे ना समझो कि 1,000 महीने तो आप कैलकुलेट ही बस कर रहे हैं कि 83 है, बल्कि ये एग्जेजुरेशन के लिए। और इसका एक माना उलमा ये भी करते हैं कि मतलब पूरी जिंदगी की इबादत से ज्यादा बेहतर है, पूरी जिंदगी आप इबादत करते रहें उससे भी ज्यादा बेहतर ये एक रात है। तो कौन सा कोई मुश्किल काम है, लेकिन देखिए रिवॉर्ड कितने बड़े बड़े, इनामात कितने बड़े बड़े। इसलिए आप समझें इस चीज को कि हम तो कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे, कोई भी इतनी बड़े काम नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह ताला तू कितना अजीम है कि तू फिर भी हमें इतना ज्यादा इनामो इकराम से नवाजता है, और तू जरा भी इस चीज की फिक्र नहीं करता कि मैं कैसे दूं क्यों दूं, बल्कि खुद वादे किए हैं, खुद इंसेंटिव दिए हैं, मांगो मुझसे और मैं तुम्हें इतना इतना ज्यादा भर भर के दूंगा। तो ऐसे रब के साथ अच्छे गुमान के साथ मांगना है, ये नहीं इस दिल के साथ नहीं कि पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मिलता, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं शायद पता नहीं कबूल भी होती है दुआ के नहीं होती, नहीं होगी जरूर होगी। मांग के तो देखें, ज़करिया अलैह सलाम की तरह मांगे, या रब तुझसे मांग के मैं कभी ना मुराद नहीं हुआ, कभी महरूम नहीं हुआ या रब, कितना कुछ अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे दिया हुआ। तो जब मांगेंगे तो कितना देगा, जो बिन मांगे इतना कुछ दे सकता है कि आप उन नियमतों को गिन भी नहीं सकते। तो मांगेंगे तो क्या कुछ नहीं देगा, हमारी तो मांगे भी बहुत छोटी हैं। मैंने अभी आपको यह हदीस बताई कि पूरी अव्वल से आखिर तक भी मिलके मांग लें तो तब भी उसके खजानों में कहाँ कोई कमी। वो शहनशाह है, उस बादशाह के दरबार में आप मांगने जा रहे हैं, इसको मामूली बात ना समझिए। इसलिए आपकी फहरिस्त छोटी है, आपकी लिस्ट छोटी है दुआओं की, देने वाले के खजाने बहुत बड़े हैं। और हम उसे इन रातों में तो ये मांगते हैं, रब्बी आइन्ना अला दिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक, अल्लाह इन रातों तक पहुंचा दिया है ना तो अब हमारी मदद भी करना शुक्र करने में, जिक्र करने में, और अपनी अच्छी इबादत करा लेना हमसे उसमें हमारी मदद करना या रब, इन रातों को हम वेस्ट ना कर दें, कहीं ये रातें ऐसे ही हमसे जाया ना हो जाएं। तो इस दुआ को मांगते रहे कि अल्लाह ताला अच्छी इबादत करवा देना, अल्लाह तू मदद करना, क्योंकि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, मेरे अंदर नहीं है ताकत या रब। तो इंशाअल्लाह हो ताला कमर कस लेंगे हम ताकि हम बेहतरीन इबादत कर सकें। और एक अगर काम करते हुए नींद आने लगी है तो स्विच कर लें, फिर तभी वो वक्त होता है स्विच करने का। मसलन अब आप कयाम से थक भी गए हैं, थोड़ा हो जाता है ना इंसान की, फिर एक उकताहट आने शुरू हो जाती है, उकताहट ना आने दे। अगर उकताहट आ गई है, शौक नहीं रहा है, तो फिर वो क्या इबादत है। तो आप फिर उसको स्विच करें, फिर कुछ और शुरू करते हैं, फिर जरा उठ जाएं, थोड़ी देर चहलकदमी कर लें, थोड़ी देर चल लें, दोबारा वुजू कर लें, लेकिन उकताहट के साथ ना करें, शौक के साथ करें। और उन रिवॉर्ड्स के ऊपर नजर रखें, क्योंकि ये रातें बहुत थोड़ी सी अब रह गई हैं, बहुत थोड़ी रह गई, और हमें मिल गई तो पूरी जिंदगी की इबादत से ज्यादा एक रात की इबादत में हमें अजर मिल जाना, और क्या चाहिए। कौन होगा दुनिया के अंदर जो कहे आप एक रात जी जॉब कर लें मैं आपको $1,000,000 दूंगा, कभी आज तक देखा आपने किसी को ऐसे कहते, कभी कोई कितनी भी बढ़िया आप किसी पोस्ट को देख ले कहीं आपको ये इंसेंटिव नहीं कोई देगा। लेकिन अल्लाह ताला वो गनी है, इसीलिए वो कहता है पूरी जिंदगी की इबादत से ज्यादा मैंने एक रात में ही तुम्हें रिवॉर्ड दे दिया, ये वो ही दे सकता है किसी इंसान का दिल ऐसा नहीं हो सकता। तो उस रब के साथ जब मामला करने लगे ना, तो फिर सोच लिया करें कि मैं किसके दरबार में खड़े होने जा रही हूँ, और उसके लिए देना कोई मुश्किल नहीं है, और मेरी सारी दुआएं कबूल होंगी इस यकीन के साथ मांगी। अल्लाह ताला हमसे सबसे कबूल फरमाए, हमारी इबादात भी, हमारी दुआएं भी, हमारा क़याम भी, हमारे रोज़े भी, और जो भी छोटा मोटा हम कर पा रहे हैं अपनी कमज़ोरी के साथ भी, अल्लाह ताला सबको कबूल कर ले।